Nicht rasiert. Einmal Masumin und Mama Zamako. Kuzista Shahadato, die in Pakistan gewahrt wurden, oder in Syrien gewahrt wurden. Khususan Marhum, Shahid, Sipte Jafar Zedi, die Aziat Pesh Karton. Und mit Dua Karton, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola, die Zahur, Jal, se Jal, Zahur, Zahur, me Jal, die Kare, Taki Hamsab, und die Saat, die Sarkuru, die Kabu Dindur, die Mola, die Zahur, die Inshallah, اور ہماری شہادت اس میں شامل ہو. یہ جو ہمارا سلسلہ سورہ نور کا جو چل رہا ہے اس کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ آج. اور سورہ نور کی میں نے 40ویں آیت پڑھی اس وقت. اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کرا ان کے اعمال کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو کہ دریائے عمیق میں ہے جس کے اوپر ایک لہر چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لہر چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل چھایا ہو. یعنی اندھیرے پر اندھیرے, اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے, اور جس کو خدا روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں دے سکتا. یہ 40ویں آیت ہے قرآن حکیم کی, جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کے اعمالوں کی مثال دے رہا ہے کہ ان کے عملوں کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو کہ دریا کی گہرائیوں میں پیدا رہتے ہیں. سائنٹیفک ڈاٹا کی تحت اگر اپن اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالیں تو یہ آیت 1400 سال پہلے آئی تھی, لیکن اس آیت کو جس خوبصورتی سے آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس زمانے میں نہیں سمجھ سکتے تھے. اسی لیے مولا متقیہ نے کہا تھا کہ وہ خود قرآن کی تفسیر بن جائے گا. آج کی سائنس کہتی ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ فقط وہ چیز پرفیکٹلی بلیک ہو جاتی ہے جو کہ گہرا دریا ہے. 700 میٹر جانے کے بعد جو روشنی جو سورج کی ہوتی ہے وہ جانا بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد روشنی کا ریفریکشن بند ہو جاتا ہے, لائٹ کا ریفریکشن بند ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کے عملوں کی مثال اس اندھیروں کی سی جو گہرائی میں ہو, اور کہیں ایسی گہرائی آپ کو ایسا اندھیرا کہیں نہیں دکھتا پوری پلانٹ پہ. اور اس کو اپریشیٹ یہ سبمرین والے کرتے ہیں جب جاتے ہیں نیچے, جو پرفیکٹ جو اندھیرا ہوتا ہے وہاں. کہا کہ ان کے اور اس پہ کہا کہ اللہ نے دو موجوں کا ذکر کرا ہے, گہرائی جس پہ ایک موج آ رہی ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہو. تو یہ نئی ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ ویوز بھی دو طرح کی ہوتی ہیں اوشن میں, ایک ڈیپ ویوز ہوتی ہیں اور ایک سپرفیشل ویوز ہوتی ہیں. پہلے اپنوں کو یہی اندازہ تھا جب سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک ویو آ رہی ہے, ہم کو کیا معلوم نیچے بھی کوئی ویو آ رہی ہے. خدا بندہ متعال نے کہا کہ نہیں, دو ویوز ہیں, کیونکہ انسان تو ایک دم اللہ نے 700 میٹر نیچے بٹھا کے دکھایا ہے قرآن میں, اتنے نیچے بیٹھے ہو تو, اور ایک نئے ویو آ رہی اس کے اوپر ایک اور ویو آ رہی اس کے اوپر بادل چھایا ہو. یہ کافر کے عملوں کی مثال ہے, یعنی اندھیروں پر اندھیرے, جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ دیکھ نہ سکے, اتنا انسان لاس ہو جاتا ہے کفر میں. انسان اتنا لاس ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے. وہ جو ڈیسپریٹ جو سچویشن ہے اللہ نے بتائی ہے قرآن حکیم نے کفر کرنے والوں کی. تو تفسیر میں ہے کہ یہ تین جو اندھیرے ہیں, موج کے اوپر موج, اوپر بادل, یہ تین جو اندھیرے ہیں وہ تفسیر میں بیان کیا ہے آیت اللہ ایمانی نے, کہ وہ ہے ایک تو ایمان میں خامی, دوسری آپ کے قول میں خامی, اور تیسری خامی عمل میں. ایمان, عمل اور قول, تین چیزوں کے جو اندھیرے ہیں یہ اس تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اندھیروں سے مراد یہ ہے. ایک مراد یہ ہے जो कि बड़ी कॉमन है कि इंसान का ये बिलीव करना कि मुझे कुछ इल्म है। नहीं, पहला तो ये कि उसको इल्म नहीं है, पहला ये कि उसको इल्म नहीं है, दूसरा ये कि उसको इस बात का इल्म नहीं कि मुझे इल्म है, नहीं है उसको इस बात का, वो सोचता है कि आई नो इट बट ही डजंट नो इट। और तीसरी ये है कि अगर उसको आप बताओ तो कहेगा कि नहीं आई एम राइट। जो तीन जो स्टेज होती है, जो आजकल का मसला है कि हर आदमी एक लीडर बना हुआ है, सोचता है कि मुझे सब मालूम है, एक तो पहले से मालूम नहीं, उसको ये बात मालूम नहीं कि उसे मालूम नहीं, फिर ऊपर सोचता है मुझे मालूम है। ये तीन अंधेरे हैं, ये तीनों अंधेरे भी इसी की मिसाल है। तो तफसीर में ये बयान किया गया कि जो जो आखिरी के जो अंधेरे बयान किए गए हैं वो बनी उमैया के टाइम के अंधेरों से भी मुराद है, कि बनी उमैया का जो सख्ती है जो मोमिनों को पड़ी उससे वो भी मुराद है। वमल्लम यजल्लाह नूरू फमा लहू मिन नूर, जिसको खुदा रोशनी न दे उसे कहीं रोशनी। ये आखिरी आखिरी चीज थी ना आयत, तो उसकी तफसीर ये बयान की गई है कि दर हकीकत पूरी रोशनी आइमा ताहरीन की रोशनी है, और जिसको आइमा ताहरीन के जरिए रोशनी न मिली उसको कहीं रोशनी नहीं मिली। तो दर हकीकत जिसने आइमा ताहरीन को झुटलाया उसकी मिसाल, उसके कल की मिसाल उन अंधेरों की सी है, हिपोक्रेसी का जो अंधेरा है, हिपोक्रेसी का अंधेरा इतना सख्त अंधेरा है मुनाफकत का। पहले अपनों ने पहली मजालिस में अपन नूर वाला नूर पढ़ चुके हैं, अल्लाह के चिराग की रोशनी की चमक पढ़ चुके हैं अपन पहली आयतों में, पहली मजालिस हो चुकी है कि नूर वो बड़ी रोशनी पे रोशनी हो रही है, खुदा जिसको चाहता है अपने रोशनी से रास्ता दिखा देता है, वो रोशनियाँ पढ़ चुके हैं अपन मोमिनी के जो कल्ब होती है, अपन मोमिन कल्ब बयान कर चुके हैं, मोमिन कल्ब में वो चिराग रोशन रहता है, मोमिन इतना इतना खुश और एनलाइटन होता है। और मुनाफिक की आप मिसाल देख रहे हैं जो बताई गई है, तो जिसको खुदा रोशनी न दे उससे कोई रोशनी नहीं दे सकता। आईमा के जरिए जो रोशनी मिली है अगर वो न ली तो आप अंधेरों में चले जाएंगे। अब समझ में आया कि दुनिया शियों के दुश्मन क्यों है, जुल्मात नूर की दुश्मन बन जाती है, जुल्मात नूर की दुश्मन बन जाती है। वल्लदीना कफरू ओलियाहु तागुतु युखरुजु मिनन नूर इला जुल्मात, जिन्होंने कुफर करा उनके ओलिया तागुत हैं जो उनको नूर से जुल्मात की तरफ लेके जाते हैं। ये जुल्मात हिपोक्रेसी की जुल्मात है। एक दुरूद पढ़ रहे हैं लकद अनजलना हो आयातम मुबैनात वल्लाह यदि मैय शाह इला सिरात मुस्तकीम। आगे की आयतें चल रही हैं, 40वीं आयत की बात की आयतें चल रही हैं तफसीर में। खुदा कहता है बेशक हमने ही ये रोशन आयतें नाजिल करी हैं, खुदा जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम बताता है, खुदा जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम बताता है। आगे की आयत अल्लाह ने बताया सिरात मुस्तकीम है क्या, और हक हमको मालूम है कि रोशन आयतें हैं क्या। रोशन आयतें कुरान और अहले बैत हैं। अगर आपने सिर्फ कुरान ले लिया अहले बैत न लिए तो आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं जा सकते, और ना आपके कल्ब में वो नूर जल सकता है। वो जो चिराग की रोशनी अभी अपनों ने पढ़ा, जिसको खुदा रोशनी न दे उससे कहीं रोशनी न मिल सकती। इस रोशनी को सूरह हदीद ने बयान किया है, दुरूद पढ़ता है योम तरल मोमिनी ने मोमिना था यसा नूरू बेना बेना ऐमान ही व एदी हम बुशराकुम उल जन्ना तजरी मिन तहतल अनार खालिद नफिया जाले का हुआ फौजुल अजीम। जिस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का नूर उनके आगे आगे और दाएं तरफ रोशनी करता चल रहा होगा, उसे कहा जाएगा आज तुमको जन्नत की बशारत हो। और ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तफसीर में क्या, जो रोशनी आगे के चलती हुई अइमा की रोशनी है, सूरह हदीद में जो आयत आई है, जो रोशनी आगे चलती होगी वो अइमा की रोशनी है। जिसको जिसको खुदा रोशनी दे दे उसको कहीं रोशनी नहीं मिल सकती। इसीलिए तो हिपोक्रेट मोमिन का दुश्मन हो जाता है, उसको मालूम है उसके पास अंधेरा, वो रोशनी का दुश्मन हो जाता है। एक दुरूद पढ़ना है, वयकूलून आमना बिल्लाह व रसूल ही व अतना सुम्मा यतला फरीकु मिनहुम मिन बादे वमा उलाएका बिल मोमिनीन। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान ले आए और हमने हुक्म मान लिया, सुम्मा यतल्ला फरीकु मिनहुम मिन बादे, फिर उसमें से एक फ़िरका फिर जाता है और वो हकीकत में ईमान लाए ही नहीं थे। ये अल्लाह मुनाफिकीन की मिसाल दे रहा है, सूरह नूर में आगे बात वाजे हो रही है कि कहा कि हम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आया और हुक्म मान लिया, सुम्मा अवल फरीक मिनहुम मिन बादी, उसमें से एक फरीक बाद में फिर जाता है, वमा बिल मोमिनीन, कहे ये लोग मोमिन ही नहीं है। वह इज़ा दुउ इलल्लाह व रसूल लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक मिनहुम मुअरिज़ून, और जब उनको बुलाया जाता कि आओ अल्लाह और रसूल की तरफ ताकि रसूल अकरम तुम में फैसला कर दे, तो उसमें से फिर एक फिरका मुंह फेर लेता है। वह इन यकुल्लू हक्कु यतु अलैहिम मुज़इनीन, और अगर मामला उनके लिए हक हो और उनको फायदा पहुंचता हो तो मुती होके चले आते। ये तीन आयतें मैंने भी पढ़ दी अभी, इस आयतों को थोड़ा अपन डिटेल में करते हैं। एक दुरूद पढ़ते हैं, तफसीर में यह है कि एक यहूदी इंसान था और एक मुसलमान था जो कि मुनाफिक था, दोनों में कुछ तकरार हो गया। तो यहूदी ने कहा कि ये तकरार हुआ है, इसका फैसला रसूल अकरम से करा लेते हैं। तो जो मुनाफिक मुसलमान था उसने कहा कि नहीं, रसूल के पास ही फैसला लेके नहीं जाना, क्योंकि उसको तो मालूम था रसूल सादिक है, हक फैसला करेंगे, उसके हक से चले जाएगा। ये नुज़ूल की तफसीर है। तो कहा कि भाई ये तो तुम्हारा रसूल है, तुम कहा कि नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये कि मुश्किल हो जाएगी मेरी इसमें, ये मुश्किल हो जाएगी। इज़ा दुउ इलल्लाह व रसूलि लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीकुम मिनहुम मुअरिज़ून, कहा आओ रसूल अकरम के पास आओ, अल्लाह के पास आओ, तो ताकि तुम्हारा फैसला हो जाए, तो उसमें से एक फिरका मुँह फेर लेता है, और मामला अगर हक हो, अगर फायदा पहुंच रहा हो तो मोती होकर चले आएंगे। अफी कुलूबिन मरबू अमिरताबू, दुरूद पढ़ते हैं, अफी कुलूबिन मरबू अमिरताबू अम अखाफो आई यहीं फल्लाहु अलैहिम व रसूलु बल उलाएका हुमुल ज़ालिमून, क्या इनके दिलों में कुछ बीमारी है, या ये कुछ शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि खुदा और उसका रसूल इनके हक में कुछ जुल्म करेंगे, बल्कि ये खुद लोग ज़ालिम हैं। कुरान अपन खोल के पढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आज कुरान खोल के पढ़ रहे हैं अपन इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये जो मुनाफिक लोग हैं, क्या इनके दिल में कुछ बीमारी है कि जो आना नहीं चाह रहा तुम्हारा फैसला कराने, या ये कुछ शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि खुदा उसका रसूल इनके हक में फैसला जुल्म करेंगे, बल्कि ये खुद जालिम है। इन्नमा काना कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूली अय यकूलु समयना वताना व उलाय का हुमल मुफलहून। आगे आयत चल रही है, मोमिनी को तो ये बात है कि खुदा और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि उनमें फैसला करें, तो कहें कि हमने सुन लिया, समय ना हो आता ना, सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फला पाने वाले हैं। ये मोमिनी की डेफिनेशन है। वो मई युति अल्लाह रसूल हो वह यक्ष अल्लाह वह यत्तक उलाय का हमुल फायजून। आगे चल रही है कि जो खुदा रसूल की इताअत करेगा वह यक्ष अल्लाह खुदा से डरेगा, वह यत्तक तकवा इख्तियार करेगा, वही लोग उलाय का हमुल फायजून। पहले था मुफलहून, इस बार आया फायजून। फायजून अल फायज होने वाला है, विक्टोरियस होने वाला है, मुराद हासिल करने वाला। दुरूद पढ़ दें फायजून। बहुत आयतें की बात पढ़ दी है, जरा इसकी तफसीर करें, थोड़ा इस पर गौर फिक्र करें। ये जो आखिरी आयत पढ़ी थी उसमें तीन चीजें थी, युति अल्लाह रसूल व यक्ष अल्लाह यत्तक, इताअत करो फिर खुदा से डरो और फिर तकवा इख्तियार करो। तो जो इताअत है वो इताअत का मायने तफसीर में बयान किए गए हैं कि आप बाहरी तकवा इख्तियार करें, बाहरी तकवा इख्तियार करें इताअत में। यक्षल्लाह से मुराद है कि अंदर से खुदा की का खौफ पैदा करें और मुती हो जाएं आप खुदा के, तब जाके आप फायजून की मंजिल में आएंगे, आप फायज होंगे। इस आयत के हकीकी मिसदाक मौला मुत्तकियान है। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हम उनके पैरों हों। दीन इलाही यही है, दीन इलाही यही है। قل اطيع الله ورسوله فان تولوا فانما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين। کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر منہ موڑو گے तो रसूल को वो अदा करना जो उनके जिम्मे है और तुमको वो अदा करना जो तुम्हारे जिम्मे है, और अगर इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इन तुतियो तहतदु, इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और हमारे रसूल के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल के सुझा देना है। तो अपनों ने शुरू में आयत पढ़ी थी, वलकद अंजलना आयत मुबैनात वल्लाह यहदी मैं ये शाह इला सिरातिम मुस्तकीम, उसकी तफसीर खुदा ने खुद बयान कर दी। अभी आखिरी आयतें पढ़ी हम लोगों ने, वो मैं युति अल्लाह व रसूल हूँ व यक्षा अल्लाह व यत्तक फ़ाउलाय का हुमुल फायजून। एक तो ये था, दूसरा क्या था, कुल अतीउल्लाह व अतीउ रसूल फ़ाइन तवल्ला फ़ाइन्नमा अलैहि मा हुम्मिलत व अलैकुम मा हुम्मिलतुम वह इन तुतियो तहतदू वमा अल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। दीन साफ अल्लाह ने बयान कर दिया सूरह नूर में, क्या सिरात अल मुस्तकीम सिर्फ खुदा और रसूल की इताअत है और कुछ नहीं है। सिरात अल मुस्तकीम खुदा और रसूल की इताअत है, और तकवा इख्तियार करना यक्षल्ला है, वो यत्तक है तकवा इख्तियार करना है। इताद यक्षल्ला यत्तक, ये दीन है, दीन इस्लाम मुबीन साफ दीन है। यही दीन है बस। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने साफ बयान करा कि ये लोग जब फायदा पहुंचता है तो तुम्हारे पास आते हैं, वरना नहीं आते हैं। फायदा पहुंचेगा तो तुम्हारे पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और उनको शक है कि तुम इनके खिलाफ जुल्म करोगे, इनको शक है कि तुम्हारे खिलाफ तुम इनके खिलाफ जुल्म करोगे, इनके दिल में बीमारी है, ये शक में। कुरान कितना साफ है। अब आप खुद इस्लामी हिस्ट्री में गौर कर लें कि रसूल अकरम पर कितनी बार शक किया गया, वो कितनी बार लोगों को खौफ आया कि रसूल अकरम हमारे हक में कुछ करेंगे, हमारा हक मार लेंगे। आप हिस्ट्री देख लें इस्लाम की। और हकीकत में जो आज जो मुश्किलात जो मजहब की आई, इसीलिए कि अहले बैत का हक छीन लिया गया है। अहले बैत से भी हक इसलिए नहीं लिया, हक इसलिए छीना गया कि उन डरता कि अगर अहले बैत को उनका हक मिल गया तो हमारी मुश्किलात हो जाएंगी। उनके पास फैसला कराने ना गए, उनको डर ये था मौला मुत्तकियान के पास कि ये हमारा हक छीन लेंगे, ये बैतुल माल का पैसा तो हमें चाहिए, इनके पास बैतुल माल में क्यों रखा रहा है। दीन साफ है। और जो अहलुल बैत को जो कत्ल करा गया, उनसे हक लिया गया, सिर्फ इसलिए लिया गया कि उनको खौफ था कि हमारे हक में जुल्म करेंगे। हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि देखो तक्वा इख्तियार करो, अगर तुम तक्वा इख्तियार करोगे तो तुम फायजून हो, तुम फला पाने वाले हो। लेकिन शैतान ने उनको आमाल आरास्ता करके दिखा और अहले बैत के रोशनी के रास्ते से फेर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है अज़ीज़ गिरामी के, इस वक्त जाहिर तौर पर ना रसूल मौजूद हैं ना इमाम मौजूद हैं, तो इस वक्त हुक्म किसका है? इस वक्त हुक्म किसका है? इस वक्त जो हुक्म है वो उलमा हक का है। इस वक्त जो हुक्म है उलमा हक का है। कुल अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। आज अतीउल्लाह अतीउ रसूल से जो जो फिक्र बनाई गई है, आज फिक्र की बुनियाद क्या है? अतीउल्लाह अतीउ रसूल पे तो फिक्र की बुनियाद है। उलमा हक, मराजा, विलायत फकी, यही तो हैं जो के हुक्म जारी करते हैं। आज हमारी भी आजमाइश है कि आज अगर हम जब फायदा पहुंचे तो उनकी बात मान लें, और जब फायदा ना पहुंचे तो क्या हमको तो ये बात समझ में नहीं आती आपकी। आज भी तो ये हालत है। ये आयतें सारी मुसीबत कोई मदीने के मुनाफे को भी पड़ी हुई थी क्या? सारे ओले उन पे गिरना थे क्या? अरे कुछ ओले हम अपने ऊपर भी गिरा है। कुरान ता कयामत का की किताब है, हर एक का सवाल जवाब है, हर एक का हर एक की आजमाइश है। रहबर मौजम ने क्या कहा था? अभी मैं पढ़ रहा था रहबर खुदबा, कि जिन लोगों ने लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो फितना पैदा करा था, बड़ी तवज्जो की जरूरत है, कहा उन्होंने दुनिया में भी नुकसान करा और आखिरत में भी नुकसान कर लिया। अब ये उन्होंने ये कहा कि आखिरत में नुकसान कर लिया, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। क्यों कह दिया उन्होंने कि आखिरत में नुकसान कर लिया? कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर आपने उलमा हक का आपने हुक्म न माना, अगर आपने उलमा हक का हुक्म न माना तो आप खुद सोच लें आप कहां खड़े हुए हैं। अब ये सब आयतें पढ़ी ना, इंसान खुद समझ लेता आयतें बड़ी साफ थी। लकद अंजलना आयत मुबैना थी, मुबैना आयत थी। अब दीन सीधा दीन है, तकवा इख्तियार करेंगे तो दीन है, वरना दीन नहीं है। आप कुछ भी अपनी तरफ से हदीसें लेते आए, लेकिन हदीस है वो ही आप मानेंगे। रसूल अकरम ने खुद ने कह दिया जो हदीस कुरान की उसमें आती है सही है, आयतों की छतरी के अंदर आती हो सही है, ऊपर छतरी एक हदीस के ऊपर आयत होना चाहिए। अभी आयतें पढ़ी साफ नहीं, लकद अंदर आज मुबैना थे। रसूल के जिम्मे वो है जो उनको अदा करना है, तुम्हारे जिम्मे वो जो तुम अदा करना है। अगर तुम इत्तबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, हमारे रसूल के पास ऐलान कर देना है। अब वो सदा और क्या आयतें क्लियर होंगी, इंसान समझ ले उलमा हक की अगर पैरवी ना करी, उनके फतवों को ना माना, उनके हुक्मों को ना माना, तो आप और हमारी फला नहीं है, हम मुनाफिक हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। अगर उलमा हक की पैरवी ना करे और कुछ फायदा लिया कुछ ना लिया, हम मुनाफिक हो गए, हम मुनाफिक हो जाएंगे। फायजुन में होना तो तकवा अख्तियार करना और उलमा हक की क़यादत को तस्लीम करना है। ये जो सिलसिला जो शहादतों का सिलसिला चल रहा है, अभी जो सिलसिला है शहादत जो चल रहा है, ये जो पाकिस्तान में जो शहादतें हो रही हैं या तमाम दुनिया में जो मोमिन जो शहादतें हो रही है, सिलसिला शहादत हमको बताता है, सिलसिला शहादत से सिलसिला इताद में है। इताद क्या है? जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना। आज सिप्ते जाफर क्यों शहीद हो गए? उन्होंने जालिम के खिलाफ आवाज उठाई, उनकी मनकबत में उनके कलाम में जालिम के खिलाफ आवाज थी, एक इनकलाब था। जब वो ना या हुसैन करके बस निकलते हैं बाहर सड़कों पे, तो हम कहते हैं कि या हुसैन हम आपके पैरोकार हैं, आज के जितने यजीद हैं हम उनके खिलाफ हैं। आज जालिम को तकलीफ क्यों होती है हमारे मातम से? कि उसको मालूम है जो मातम कर रहा है सिर्फ यजीद के लिए नहीं कर रहा है, आज के यजीदों के लिए भी कर रहा है। यह मसला है जालिम का, इसलिए बाम करता है मोमिनीन को। इसलिए जालिम को उससे मतलब नहीं पुराने अजीज से, उसको मालूम है कि आज के अजीजों के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनको मालूम है कि जिस वक्त ही मातम होकर सब सड़कों में निकलते तो उनको बारवे की याद आती है। मसला यह है कि बारवा आने वाला है। कुरान हकीम में था ना कि हमने इरादा कर लिया जो लोग मुल्क कमजोर हो गए उनको पेशवा बनाए। आज शिया कमजोर हो चुके हैं, मालूम है कि हक लिया है आले मोहम्मद का और हक अल्लाह दिलाएगा इन मोमिनों की मदद से, इसलिए मोमिन कत्ल किए जाते हैं। ये जो कत्लकारी जो मोमिनों की है, ये उनकी हक की दलील है कि बनी इसराइल को कत्ल किया जाता था कि मूसा आने वाले थे। आज मोमिन का कत्ल इसकी दलील है, उनके हक की दलील की आने वाला है इमाम, यह हक की दलील है। और आप और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिन्होंने जो रोशनी जो जलाई है उसको हम उसको और परवान दें। युरीदुना लियुत्फियु नूरल्लाह भी अफवाहिम वल्लाहु मुतिम नूरी वलव करीहुल काफिरून। ये चाहते हैं खुदा की रोशनी को फूंक मार के बुझा दें, खुदा अपनी रोशनी पूरी करके रहेगा भले काफिरों को बुरा लगे। ये जो आज जो बॉम्बिंग जो होती है शियाओं पे करबला में नजफ में पाकिस्तान में, चाहते हैं कि ये जो हुसैनी जो नाम लेते हैं उनको उनका खत्म कर दे। लेकिन खुदा ने कह दिया है कि हम इसको पूरा करके रहेंगे, तुम्हें तकलीफ हो या ना हो, काफिरों को बुरा लगे या ना लगे, ये तो होके रहेगा। हाय करबला का मंजर कि करबला के अंदर इमाम हुसैन का सर, अरे वो इमाम हुसैन का सर जो के राहिब ने रखा रात में अपने पास, तो उसने मुझसे देखे कि उस एक नूर का सिलसिला था जो जमीन से आसमान की तरफ, कभी आसमान जमीन की तरफ आता था। राहिब ने जब ये मौजा देखा नूर वाला नूर का, जो कि हम सूरे नूर में पढ़ते नूर वाला नूर, उसने खुद अपनी आंखों से जब राहिब ने देखा इस सर को नूर वाला नूर, तो वो इस्लाम ले आया। ये नूर वाला नूर था, अरे नूर वाला नूर की मिसाल के यही जो ये जो सर यजीद के दरबार में गया और तख्त पे रखा और मलून यजीद बैठा था तख्त पर, लेकिन उस मलून की हालत ये थी कि वो शराब में धुत था। अरे मोमिनों में बताओ वो शराब में धुत क्यों था? अरे मैं वो राज बताता हूँ वो शराब में धुत क्यों था। अरे ये वही अंधेरे थे जो यजीद के कल पे थे, कि वो दरिया आमी की गहराइयों के अंधेरों में
डूबा हुआ था और यजीद को समझ में आ रहा था मैं कौन हूं। यजीद अपने आप को भूलना चाह रहा था कि मैं अपने आप को भुला दूं, तो वो शराबी ने शराब पीना शुरू करी कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। तो एक तरफ जुलमात बेटी थी और उधर हुसैन का सर नूर अल्लाह नूर अल्लाह।